गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजं। भक्तो, सुपर कैसेट टी सीरीज कंपनी दिल्ली के माध्यम से मैं आप लोगों को शिष्य परीक्षा नामक प्रसंग को सुनाने जा रहा हूं। इस प्रसंग को सुनकर आपको आनंद और ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा के चरणों में दो लाइनें और तत्पश्चात शिष्य परीक्षा कथा प्रसंग।
भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते हैं। सताए जाते हर दीन दुखी नजरों से प्रभु, हर दीन दुखी नजरों से प्रभु आंसू से बहाए जाते। पूजा को पसारी के आंसू प्रभु मीठी में मिलाए जाते जो फूल खिले पूजा के लिए जो फूल खिले पूजा के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त सताए जाते एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्तों प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर वाटिका में विद्यमान है। आज क्वार मास की पूर्णमासी है। यहाँ पर तुलसी महाराज ने एक चौपाई लिखी है उसकी व्याख्या ध्यान दें भक्त लोग। समय जानी गुरु आए छुपाई समय जानी गुरु आए छुपाई मिल प्रसून चले दोनों भाई चौपाई को विशेष रूप से ध्यान दे भैया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कुछ सवाल किए हैं। कहने लगी महाराज भगवान राम ने समय क्या जाना और दूसरा सवाल है कि फूल लेने के लिए दोनों भाई ही क्यों गए। भोले बाबा कहने लगे देवी भगवान राम ने बिना गुरुदेव की आज्ञा के कोई कार्य नहीं किया। जैसे प्रमाण निसी प्रवेश मुनि आय सुदीना सब ही संध्या बंदन कीना दिवस दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करण चले दोनों भाई मिले हैं जहाँ पर भगवान ने बगैर गुरु की आज्ञा के कोई कार्य नहीं किया। भवानी कहने लगी महाराज फिर हमारे सवाल का जवाब। भगवान शंकर कहने लगे देवी भगवान ने समय क्या जाना। सोचते हैं प्रभु वाटिका में सीता का दर्शन होगा, बिना सीता के धनुष तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए आदि शक्ति और आदि पुरुष का होना बहुत आवश्यक है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आदि पुरुष और आदि शक्ति का मिलन आवश्यक है। जिस प्रकार से संसार की सृष्टि के लिए स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा जी ने 14 लड़के बना डाले लेकिन सृष्टि नहीं चली। अंत में उन्होंने एक स्त्री और एक पुरुष बनाए जिससे संसार की रचना हुई। कहने का मतलब लोग कहते हैं संसार माने कोई कहता दुनिया और दुनिया माने संसार, नहीं ऐसा नहीं है। संसार के मतलब है प्रेम, स्त्री और पुरुष के प्रेम का परिणाम है ये संसार, ये दुनिया। यदि स्त्री और पुरुष प्रेम न करता तो ये संसार न चलता। कहने का मतलब ये बगैर आदिशक्ति और आदि पुरुष के मिले संसार का भार हरण नहीं होगा, बिना सीता की ताकत के भगवान राम से धनुष नहीं टूटेगा। रामायण में तुलसी महाराज ने वर्णन भी किया है राम से धनुष का कोई संबंध नहीं, राम बरी, राम से कोई संबंध नहीं। फिर भाई धनुष किसने तोड़ा तो लिखा आगे राम बरी सिय भंज चापा, राम से कोई मतलब नहीं, धनुष किसने तोड़ा, सीता ने। भगवान शंकर कहने लगे देवी यही भगवान राम ने विचार किया, जिज्ञासा उर रही समाई, अरे जिज्ञासा उर रही समाई, समय जाने दूर आय सुपाई, है। सवाल नंबर दो, भगवान राम अकेले क्यों नहीं गए। पार्वती जी ने भगवान शंकर से सवाल किया कि महाराज पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। अरे भाई पूजा के लिए 2, 4, 6, 10, 20 फूल चाहिए थे, ऐसा तो नहीं था। पूजा के लिए 2, 4, 6, 10, 20 फूल चाहिए, लड़ी दो लड़ी तो चाहिए थे। यहाँ पर क्यों लिखा गया कि पूजा के हित चाहिए, भरना था न जहाज, दोनों भाई क्यों गए फूल लेने के काज। भगवान शंकर कहने लगे देवी विचार कर रहे भगवान राम कि अगर मैं आज अकेले जाता हूँ, लिखा है 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी महाराज ने लिखा है, क्या 18 पुराणों के रचयिता व्यास ने लिखा है कि मनुष्य को कभी भी अकेले एकांत में किसके साथ, माता सुता बहिनी के तिया, अरे माता सुता बहिनी के तिया, कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा, व्यास जी महाराज ने लिखा है कि मनुष्य को अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ यदि ये जवान हैं तो कभी भी इनके साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए। भगवान राम विचार कर रहे हैं मैं बगिया में जाऊंगा अकेले, उधर से सखियां होंगी तमाम, और कैसी सखियां, आहा, सीता के विषय में लिखा है स्वामी जी ने, सीता कैसी है, सुंदर नहीं है, सुंदरता कहाँ सुंदर करई, मणिग्रह दीप सिखा जनु बरई। अरे जो सुंदरता को भी सुंदर करती है वो सीता है। और भगवान राम के विषय में लिखा है, भगवान राम के विषय में क्या लिखा है, गगनवा हो राम, गगनवा हो राम, बड़ा निकला रे गगनवा हो राम। सुंदर है, उधर से सीता भी सुंदर है। प्रभु ने विचार किया, व्यास जी महाराज ने लिखा है, माता सुता बहिनी के तीरा और कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा। क्यों? इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? लिखा है, यही ते होती बूथी कर माता, यही ते होती बूथी कर माता, अरे यही ते होती बूथी कर माता, करियो ना कछु, अरे करियो ना कछु शाशा। बात किस समय की है जरा विचार करें भैया लोग, बड़े प्रेम के साथ में सुने। एक समय की बात है, व्यास जी महाराज नैमी शरण में बैठे थे अपने आश्रम पर, नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना चल रही थी। व्यास जी महाराज के सारे शिष्य उनके चारों तरफ बैठे हैं। प्रकृति छटायुत परम सुहावन और तट गोमती सुआश्रम पावन, तो तहां व्यास मुनि परम सुजाना और बैठे लिखत नीति विधिनान। व्यास जी महाराज गोमती नदी के किनारे बड़ा सुंदर अच्छी अच्छी नीति की बातें लिख रहे थे। सारे शिष्य लोग उनकी रचना को देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये लिखा कि माता सुता बहिनी के तीरा, जवान माँ हो, जवान बहन हो, जवान बेटी हो, श्रोता भैया ध्यान दें कितने मतलब की बात। 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी महाराज के द्वारा आज एक शिष्य की परीक्षा होने जा रही है। आप लोग भी सुने, और कथा को सुने ही नहीं, आप लोगों ने तमाम कैसेटों के माध्यम से कथाओं को सुना होगा। जिन भैया लोगों ने मेरी कैसेट को सुना है, आपको अवश्य ही एक न एक नई बात प्राप्त हुई होगी। आज आप अपने मतलब की बात को ग्रहण करें, इस प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुने। जवान लड़की हो, जवान बहन हो, जवान माँ हो, कभी भी विचारवान पुरुष को एकांत अकेले में इनके पास बैठना नहीं चाहिए। जैसे व्यासी महाराज ने लिखा कि माता सुता बहिन के तीरा, कबहुन बैठे पुरुष गंभीरा, यही ते होती बुद्धि वरनासा, करियो ना कछु कम विश्वासा। बहुत से शिष्य लोग बैठे थे, उनमें से एक शिष्य महाराज खड़े हो गए। नाम जैमिनी ऋषि बोले तते ताला, जैमिनी ऋषि बोले तते ताला, अरे जैमिनी ऋषि बोले तते ताला, शंका मम गुरुदेव कृपाला। एक शिष्य थे जिनका नाम था जैमिनी, खड़े हो गए और कहने लगे, गुरुदेव एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा है गुरुदेव माता सुता बहिनी को त्यागे। महाराज आपने लिखा है कि आदमी को माँ के पास नहीं बैठना चाहिए, बहन के पास नहीं बैठना चाहिए, लड़की के पास नहीं बैठना चाहिए। महाराज मेरी बात का जवाब दे दे गुरुदेव, आदमी माँ के पास न बैठे, लड़की के पास न बैठे, बहन के पास न बैठे। एक कहावत कहते हैं देहाती भाषा में कि जब इनके पास न बैठे तो पहाड़ में घुस जा। माता सुता बहिनी को त्यागे, नर बैठी तब कही के आवे। गुरुदेव आदमी माँ के पास न बैठे, लड़की के पास न बैठे, बहन के पास न बैठे तो कहाँ चला जाए। गुरुदेव यहाँ न उचित मोहे लगे ओ गुसाई, यहाँ न उचित मोहे लगे ओ गुसाई, लिखुआ पर आके हूँ मिटाई। ठीक नहीं लगा, या तो आप इसको मिटा दीजिए अथवा इसकी जगह पर दूसरा मंत्र लिखिए। जैसे ही शिष्य की बात को सुना, गुरुदेव को मुस्कुराहट आ गई, गुरुदेव को मुस्कुराहट आ गई, कहने लगे बेटा, व्यासन बोले सुनी असबानी। बेटे की बात को सुना, अपने शिष्य की बात को सुना, व्यास जी महाराज कुछ न बोल सके। व्यासन बोले सुनियस बानी, खींची रेख हृदय सुख मानी। व्यासन बोले सुनियस बानी, खींची रेख बोले सुनिया सुबानी, खींची ही दीन है निकारी की तजब नाही अपने शिष्य की इस बात को सुना मन में मुस्कराए। एक बच्चे ने मेरे सामने मेरी बात को काट दिया। जैमिनी महाराज कहने लगे, या तो गुरुदेव इसको निकाल दीजिए अथवा इसको काट दीजिए। मुस्करा के रह गए व्यास जी महाराज। कहने लगे, अच्छा बेटा, तुमने जैसे कहा वैसे ही होगा, तुमने जो कहा वही होगा बेटा। दिन निकारी ठीक है जब नाही, दिन निकारी ठीक है जब नाही, जैमिनी फूली आए, जैमिनी फूली गए मन माही। गुरुदेव ने कहा मैंने निकाल दिया, जैमिनी फूल के मोटे बन गए। कहने लगे, वाह, आज मैंने गुरुदेव की बात को पकड़ पाया। लेकिन बंधु, यहाँ तो परीक्षा होने जा रही है। व्यास जी महाराज ने फौरन अपनी किताब को बंद कर दिया, वहीं पर कलम को रख दिया, किताब को बंद कर दिया। चाहे कोई कवि हो, चाहे कोई लेखक हो, चाहे कोई विद्वान हो, अगर समस्या बीच में आ गई, जब तक उस समस्या का समाधान लेखक कवि या विद्वान न कर दे, तब तक उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर उसने समस्या को बीच में छोड़ दिया तो वो बात सही नहीं। इसलिए व्यास जी महाराज के मार्ग में अब समाधान है। पहले इस बात को सिद्ध करेंगे तब आगे रचना बढ़ेगी। इसलिए पुस्तक को बंद कर दिया और पुस्तक को बंद करके आराम से बैठ गए। जैसे ही गुरुदेव ने अपनी रचना को बंद किया, वैसे शिष्य लोग भी उठ करके अपने अपने स्थान को चले गए। बड़ा विचित्र समय आया बंधु, बड़ा विचित्र समय। समय बीतता गया, कितना पावन समय है ये। आज सारे शिष्य लोग अपनी अपनी कुटिया में बैठे हैं। तब तक बीती गयो कछुकाला, अरे तब तक बीती गयो कछुकाला, तब तक बीती गयो कछुकाला, आयो चातुर माल रसाला, बंद कर दिया। समय आया, जब समय आया, कौन सा समय? सावन के सपाचयंदियारी, अरे सावन के सपाचयंदियारी, सावन के सपाचयंदियारी, यहू किसी दामी सावन का महीना, अंधेरी रात। विशेषता इस बात की है बंधु, कितना विचित्र समय। इस कथा का आया कि सावन का महीना भी है और अंधेरी रात भी है। कितना उपयुक्त समय बैठा, हर वस्तु के लिए हर समय उपयुक्त नहीं बैठता, परंतु इस कथा को देखें कितना उपयुक्त समय बैठा है। इसके कहे जाने का समय सावन और रात्रि भी अंधेरी। सावन का महीना है, चारों तरफ से अंधकार में रात्रि, ऊपर से कभी कभी बिजली चमक जाती है। साथ ही साथ सावन का महीना भाई मनोहर प्रकृति का मीरा, भाई मनोहर प्रकृति का मीरा, भाई मनोहर प्रकृति का मीरा, बरसन मेरे अरे परसों में रसोई हमाल लिया, त्रिविधि समीरा, कभी पूर्वैया कभी उत्तरहरी कभी दक्षिणहरी, आह। और ये हवाएं कितनी विचित्र लगती है। सावन का महीना कैसे आपको दिखेगा, कैसे आप समझेंगे कि सावन का महीना है। ध्यान दे श्रोता बंधु, घन कर जई सुने कल कल मोरा, घन कर जई सुने कल कल मोरा, नाच ही उरे आनंद न तोरा, बादल कर देते हैं, बादलों के गर्जने से मोर आवाज करते हैं। बंधु आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि किसान अंधा होता है। बड़ा ही विचित्र एक प्रसंग है, मोर के गर्जने की आवाज आ गई। एक बार इंद्र ने सूखा डालने का विचार किया और मेघों से कहा गया कि तुम बरसात नहीं करोगे। मेघों ने कहा भाई हम नहीं बरसेंगे, एक शर्त है, अगर मोर गरजेगा तो हम बरसेंगे, मोर नहीं गरजेगा तो हम, मोर नहीं बोलेगा तो हम नहीं बरसेंगे। अब भाई भगवान पहुंचे मोर के पास, मोर से कहा भाई देखो इस वर्ष तुम बोलोगे नहीं क्योंकि हमको सूखा डालना है। मोर ने कहा हम कतई नहीं बोलेंगे महाराज, एक शर्त है, अगर मेढक बोलेगा तब तो हम बोलेंगे, और मेढक अगर नहीं बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे। मेढक से कहा गया भैया तुम भी मत बोलना क्योंकि तुम बोलोगे तो मोर बोलेंगे, और मोर बोलेंगे तो पानी बरसेगा, और मैं पानी बरसाना नहीं चाहता हूँ इस वर्ष। मेढक ने कहा हमारी का परी जो हम बोली। बंधो अषाढ़ का महीना आया, किसान खेत जोत डाला, पानी की बूंद नहीं, बड़े बड़े ढीले पड़े हैं खेत में, लेकिन उसने सोचा लाओ धान बो दे, सूखे में ही धान बो दे, कभी न कभी तो बरसेगा ही। किसान ने धान बोया, एक ढीले के नीचे एक मेंढक बैठा था। किसान ने जो धान फेंका तो वो धान मेंढक की आंख में जाकर के गिर गया। अब मेंढक की आंख में जब धान गिर गया तो रात में मेंढक अपनी पीड़ा में बोल पड़ा। जब मेंढक बोल पड़ा तो मोर भी बोले, मोर भी बोले तो बादल छा गए और घनघोर वर्षा हो गई। इसीलिए जब भगवान ने पूछा बादलों से तुम क्यों बरसे, मेघ ने कहा भैया हमने कहा था मोर बोलेगा तो हम जरूर बरसेंगे। भगवान ने मोर से पूछा तुम क्यों बोले, मोर ने कहा भाई हमने कहा था अगर मेढक बोलेगा तो हम जरूर बोलेंगे। मेढक से पूछा तुम क्यों बोले? मेढक ने कहा महाराज बोले कहा हम किसान अंधा था, उसने हमारी आंख में धान डाल दिया और मैं पीड़ा में बोल पड़ा। कहने का तात्पर्य बंधु जब मोर मेढक बोलता है तो मोर बोलते हैं और मोर बोलते हैं तो आकाश के बादल जब गरजते हैं तो मोर अवश्य ही बोलते हैं। आकाश की आवाज को सुनकर के जब मोर बोले ये चौमास की स्थिति है। मेघों का गर्जना, मोर का बोलना, मेढक का टर्र टर्र दादुर उच्चारे, झनर झनर झींगुर झनकारे, घन गर्जे सुनी कल कल मोरा, नाचे उर आनंद न थोरा, ये सावन की नहीं बल्कि बरसात के महीनों की पहचान है। बंधु और समझे अनुपम छरित छटा चारा, अनुपम चरित छटा चाहरानी अरे गच्छन लपीती लता लहरानी। महीने में जैमिन ऋषि जंगल में अपनी कुटिया में बैठे हैं। जैमिन ऋषि निज कुटिया माही, जैमिन ऋषि निज कुटिया माही, करही भजन प्रभु मन हार चाही। जैमिन ऋषि निज कुटिया माही, खड़ी भीग रही है। बड़ी ही सुंदर अद्वितीय सुंदरी एक वृक्ष के नीचे खड़ी भीग रही है। स्थिति क्या है उसकी? चपटे वस्त्र भीग तन माही, इतने बारीक कपड़ा पहने हैं कि पानी बरसने से उसके सारे कपड़े शरीर में चिपट गए। चपटे वस्त्र भीग तन माही, यही ते बाहसा कुचाई मन माही। शरीर से चिपट गए हैं, जारे के मारे कांप रही है। अगर उसको देखो तो ऐसा लगता है कि वो किसी की शरण चाहती है। लेकिन किंतु न वह कछ मुख से बोले असमंजस की गांठ न खोले मृदुल भाव लखी सुंदर अंगा तपस्वी कराई तपस्या भंगा इतनी सुंदर है कि उसको जो देख लेगा वही मोहित हो जाएगा। लेकिन बाबा जैमिनी वारे बाबा पर जैमिन ऋषि सुचि व्रत धारी माता सम समुझई पर नारी लेकिन कैसे है बाबा तप कठोर निर्मल ब्रह्मचारी तप कठोर कठोर निर्मल ब्रह्मचारी और रहे आदि गया राज्य निहारी उस लड़की की ओर देख रहे कि कैसे है बाबा
काम सतावई
उन्हीं न कैसे ऊसर बीज जमैना जैसे जैसे ऊसर खेत में बीज डाल दो जैसे ना जमत ऐसे बाबा लड़की को रूप चुई और बाबा बैठे देखे एक और कतई उनका मन चलायमान नहीं हुआ। लेकिन वो लड़की बाबा ने देखी कैसे अंधेरी रात थी और वो तो पेड़ के नीचे बाबा कुटिया में तो बाबा ने देखा कैसे दामिनी दम की प्रकाश दिखावई दामिनी दम की प्रकाश दिखावई दामिनी दम की प्रकाश दिखावई कहीं से सिगरो जैसे लगावई कहीं से सिगरो जैसे बिजली चमकती है बाबा की दृष्टि पड़ गई एक बिजली आकाश में चमकी और दूसरी बिजली पेड़ के नीचे कैसी है उसकी निगाह जैसे पैनी कटार कमलानन मृग शावक नैनी बाबा की तरफ वो अपने नेत्रों की कटार चला रही लेकिन बाबा काम सता रही उन्हें कैसे ऊसर बीज जमैना जैसे वो अपने नेत्रों की कटार बाबा पर चला रही है लेकिन बाबा मुनि कछ मरम जान नहीं पाए कछु मरम जानी नहीं पाए सरल भाव उठी द्वारे ही आए बाबा बिचारे सीधे साधे कुछ नहीं जाने बहन पाए बाहर निकल के आए,
लड़की के पास में पहुंचे और क्या बोले, और उससे बोले अशबानी, और उससे बोले अशबानी, खड़ी खड़ी क्यों भीगो पानी, ठंडी वायु घनी अंधियारी, सुनहु ध्यान धरी सुनहु ध्यान धरी बात हमारी, बाबा कुटिया के बाहर निकले आए, कहने लगे बेटी बिकट बियन नहीं संग सहेली, यही कारण तुम हिरहु अकेली, कुटिया भीतर आई पधारो, कुटिया भीतर आई पधारो, हीरे बाष्ट्रन आप उतारो, हीरे बाष्ट्रन आप कुटिया में आ जाओ, लो अपने भीगे कपड़ा उतार डालो, हमारे सूखे कपड़ा पहन लो। बंधु लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, नारी नाही दीन हो कछु उत्तर, और आई तुरत कुटी के भीतर। जब कुटिया के भीतर आई, बाबा ने अपने कपड़े दे दिए, जब अपने कपड़े दिए, लड़की ने अपने भीगे कपड़ों को निकाल डाला, बाबा के दिए हुए कपड़े धारण कर लिए,
भीगे वस्त्र बदल सब डारे, भीगे वस्त्र बदल सब डारे, झटपट कुंती से फेस संभारे,
चटाई दी और कालो इसे तुम बिछा लो, बेटी करीब से राम को संभारी, करीब से राम को संभारी, हाल कहू महादारी, चटाई दे दी, लड़की ने कुटिया में चटाई बिछा ली। बंधु अब चटाई भर की कुटिया में जगह थी, लड़की लेट गई, बाबा कहाँ जाए। बंधु तो थोड़ी सी जगह चटाई पर रह गई थी, वो बाबा ने कवर की, लेट गए दो शांति अशंका, ऐसे बने 36 के अंका, कैसे 36 का अंक,
एक तरफ लड़की का मुंह, एक तरफ बाबा का। लेकिन बंधु आप लोगों ने देखा होगा भैया, सारी रात एक करवट लेटना बड़ा मुश्किल। हम तो ना लेट पाओ भैया, दूसरे के हम नहीं कहत, एक करवट से लेटे ना कि पेट फूलो ना। बाबा थोड़ी देर तक तो लेटे रहे, देर भाई कछु बदले करवट, देर भाई कछु आए, देर भाई कछु बदले करवट, ऐसे बने ऐसे बने जैसे तेरे। अब तो दोनों लोग ऐसे बन गए जैसे 63। श्वास में श्वास जब है टकरानी, उठी बैठे तब ऋषिवर ज्ञानी। जरा विचार करे बंधु, जिन बाबा ने बिटिया कह करके अंदर लाए, माता कह करके लिटार दिया, अब वो क्या कह रहे हैं? मम इच्छा उर करऊ विवाह, मम इच्छा उर करऊ विवाह, पूरा बहु सुनारी मोर उठाह। कहा कि तुम हमारे से विवाह कर लो, देखो बंधु कामनाओं की भावना। लड़की मुस्कराई, कहने लगी बाबा हमारे उर अतिशय अभिलाषा, और प्रथम ही तुमने काहे न भाखा। हमारी मनमत पहले ही, तुमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया? अब तक तो दिया होगा, सब हो जा तो। लेकिन बाबा एक शर्त है, हमारे समाज में शादी तब मानी जाती है जब सात भामरे पड़ जाए। बाबा बड़े दुखी, सोचने लगे आधी रात होने जा रही है, अब यहाँ कहाँ से नाई आएंगे, कहाँ से पंडित आएंगे, कैसे भामर पड़ेगी। लड़की मुस्कराई, मंद मंद मुस्कानी बामा, मंद मंद मुस्कानी बामा, ऋषि से बैन कहे अभिराम। की जरूरत नहीं, कुटिया खम्भु मानी सहकारी, और भामरी सातले हु तुम डारी। आ कुटिया को खम्भ बना लो और इसी के साथ पहुंच जा। बाबा ने कहा इसमें कौन सी परेशानी, तो तुरंत ऋषि आगे चली देऊ, और मुदी तनारी पाछे लगी देऊ। कदम दो कदम लड़की चली, मसमसा के बैठ जाए बाबा, तब मरी गए। बाबा ने कहा का आफत आई गई। लड़की कहने लगी महाराज हमारे पैर में कांटा लग गया। बाबा ने कहा अब कैसे चलोगी तुम? लड़की कहने वह बोली लैया सवारी, और तब है भामरी पर हमारी। लड़की ने कहा तो सवारी ले। बाबा और परेशान कि आधी रात में जंगल में सवारी कहाँ, वो शहर हो तो सवारियों मिल जाती। बाबा रोने लगे, लड़की मुस्कराई, लड़की मुस्कराई, कहने लगी बाबा एक तरीका और है। कहा बस कह डालो जल्दी। कहने लगी सुनो, बनऊ आशा तुम हम अशबारा, बनऊ आशा तुम अरे बनऊ आशा तुम हम अशबारा, अहिमा तनिक न लाग हुबारा। बाबा एकदम घुटुअन पड़ गए। मेरे बंधु घुटुअन पड़ गए। लड़की ने आराम से बैठ ली। बने ऋषि कामांध तुरंगा और चढ़ी नारी निज चंचल अंगा, हाँ चली न चाबू कभी कराला, मारी उधेली मुनि की खाला। मारू खाई मुनि कछू न बोले, कुटिया चहु दिशी घूम डोले। सोचे शायद सबकी भी हम ऐसे मारू होते हो, बाबा मार खाए मगन। सोचने लगे हुई जान दो मारू, घरवाली तो मन की मिल रही, मार हो जाते हुए जान दो। सातवां चक्कर हुआ बंधुओं, लड़की उतर पड़ी। बाबा ने उठ करके देखा, उठे भूमि जो दृश्य निहारा, तो चकित भये जयमिनी अपारा। क्या देखा, दंड का मंडल कर सुखी ऐसा, दंड का मंडल कर सुखी ऐसा, प्यास देव ठाणे मुनि देसा। खड़े देखा, हाय पैरों पर गिर पड़े। गुरु पद लपटी मुनि तत्काला, क्षमा मांगी बहु विनय विशाला। कहने लगे गुरुदेव, हम जो कहा सुचित नहीं दीजे, जो ये लिखो सोए लिख दीजे। क्या माता सुता बहिन के तीरा, कबहुन बैठई पुरुष गंभीरा। भगवान राम सोच रहे बंधु, आई अपनी बात पर। भगवान राम सोच रहे हैं कि उतते हो अनेकन बामा, और साई जीती ले मोह कामा, और एक के संग अगर दुई हो, एक के संग अगर दुई हो, एक के संग अगर दुई होई, काम भाव कदापि